आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह ना तो कभी जन्मा है ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। अब इसके पहले वाले श्लोक में एक चर्चा आती है कि जो व्यक्ति सोचता है कि मैं किसी को मार रहा हूं या कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मर रहा हूं, दोनों ही व्यक्ति अज्ञान में है। क्यों? एक उदाहरण से आप आसानी से समझ सकते हैं। पोस्टमार्टम समझते हैं आप लोग? मरने के बाद कभी कभी शरीर को चीर फाड़ की जाती है, तो क्या उस डॉक्टर के ऊपर जो पोस्टमार्टम करता है मर्डर का अभियोग चला जाता है? यानी कि शरीर को मारा नहीं जा सकता क्योंकि शरीर पहले से मृत है, इतना समझते हैं आप। और आत्मा को तो व्यक्ति टच ही नहीं कर सकता, आत्मा के मरने का प्रश्न ही नहीं होता है। तो इस कारण से जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं फलाने व्यक्ति को मार रहा हूं या मार सकता हूं, इस कारण से वो उनके प्रति वो हिंसा करता है, तो वो व्यक्ति अज्ञान में है। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि मैं मर जा रहा हूं, वो भी अज्ञान में है। प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि प्रायः कोई व्यक्ति मरता है, स्पेशली जब घर में मरता है, बोलता है बेटा मैं तो जा रहा हूं, अपनी माँ का और भाइयों का, छोटे भाइयों का ध्यान रखें। तो उनसे पूछो कि आप जा रहे हैं तो आप कहाँ जा रहे हैं, ये उसको नहीं पता है। तो यानी कि ये अज्ञान है जिसके कारण हम सोच रहे हैं कि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही है या कोई मर जाएगा या हम लोग मर जाएंगे। मृत्यु से भय होने का कारण अज्ञान है। एक इस बात का अज्ञान कि अब अगला शरीर मुझे कैसा प्राप्त होगा, इसी कारण से कंस माता देवकी को मारना चाह रहा था। वसुदेव जी ने कहा आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आगे अगला शरीर तैयार है आपका। जिस प्रकार से एक जोंक एक पत्ती से उठती है दूसरे पत्ती को पकड़ने के बाद, या एक व्यक्ति एक पांव बढ़ाता है पहले पांव को जमाने के बाद, उसी प्रकार से अगला जन्म अगला शरीर तैयार हो जाता है, तब आत्मा को ये शरीर डालना। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, क्या इस समय आप लोग शरीर परिवर्तन कर रहे हैं, हाँ या नहीं? अच्छा, अगर आप लोग का शरीर परिवर्तन नहीं हो रहा तो 10 साल बाद आप लोग ऐसे ही दिखोगे जैसे अभी दिख रहे हो। कभी क्या ऐसा हुआ है आपने किसी व्यक्ति को 20 साल बाद देखा हो और बीच में कभी नहीं देखा, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? और आप एक सेकंड के लिए शॉक लगता है ना कि आपकी स्मृति क्या है, वो 20 साल पहले वाले शरीर की है, और लिटरली ऐसा लगता है कि आप किसी व्यक्ति को नए जन्म के रूप में देखा। तो शरीर हमेशा परिवर्तित हो रहा है क्योंकि हमारे बाल उग रहे हैं, हमारे नाखून बढ़ रहे हैं, कोई इस पर कंट्रोल नहीं है हमारा। लेकिन आत्मा चिरस्थायी रूप से रहती है। तो आप देखिए कि अगला शरीर मिलने वाला है, यानी कि जो 2 साल बाद या 2 दिन बाद जो शरीर मिलेगा वो पहले से निर्धारित है, और ये सब शरीर जो आज का शरीर है छूट जाएगा। इतना समझ में आ रहा है आपको? देखिए, ये समझ में आना ये बहुत बड़ी बुद्धि का लक्षण है, और ये बुद्धि हरे कृष्ण मंत्र जप करने से आती है। इसे कहते हैं सूक्ष्म बुद्धि। नहीं तो एक भौतिक रूप से बहुत विद्वान व्यक्ति भी इस बात को नहीं समझ सकता, और एक सामान्य सा व्यक्ति भी समझ सकता है अगर उसके पास थोड़ी सी बुद्धि, लेकिन वो बुद्धि सूक्ष्म होनी चाहिए। तो आप देखिए कि हम इस अज्ञान के कारण भय से ग्रसित हैं। कौन से अज्ञान के कारण? हम ये शरीर है, और जब तक व्यक्ति इस आसक्ति में रहेगा धर्म करने में कहीं ना कहीं उसको हिचकिचाहट होगी। यही बात अर्जुन के केस में है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अब इनका शरीर जब छूटेगा, जो द्रोणाचार्य हैं, कृपाचार्य हैं, जो भी हैं, ये लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, इन्होंने धर्म किया है, तो अगर इनका शरीर जब नेक्स्ट मिलेगा तो अच्छा शरीर प्राप्त होगा। जैसे अमित प्रभु अगर इस घर को आपको बोला जाए कि त्याग करके आपको व्हाइट हाउस दे दिया जाएगा, व्हाइट हाउस अमेरिका का है, कुछ भी तो आप लोग खुश होंगे ना। चलिए वृंदावन में आपको महल दे दिया जाएगा, अच्छा तो खुश हो जाएंगे। कहने का मतलब है आपको अगली परिस्थिति अच्छी मिलेगी तो आप खुश हो जाएंगे ना। मान लीजिए कोई व्यक्ति उसकी नाक थोड़ी अच्छी नहीं, बहुत सुंदर नहीं, तो बोले आपका शरीर परिवर्तित करके आपको बहुत सुंदर शरीर दिया जाएगा तो हम खुश होंगे। लेकिन अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम ये शरीर हैं तो हमको डर लगेगा। यही प्रॉब्लम इस समय अर्जुन के सामने है और यही प्रॉब्लम हम सभी के सामने है। और ये भी अद्भुत बात है कि व्यक्ति का शरीर चाहे कितना भी गर्हित हो हम उससे आसक्त हो जाते हैं, उसको त्यागना नहीं चाहते। एक बार परम पूज्य राधा बोध महाराज सामने बता रहे थे कि बुढ़िया अम्मा थी इनके गांव में और बार बार बोलती थी कि अब तो मैं मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ, मरना चाहती हूँ। तो महाराज जी से उनको बोले कि करण का तार है, पकड़ लो, मर जाओ। अरे नहीं, ऐसे थोड़ा मरूंगी, मरना चाहती तो पकड़ लो करण, लेकिन मर जाओ। हम लोग देख रहे हैं कि जिजीविषा जीने की इच्छा आत्मा की बहुत स्ट्रांग है और ये कभी शास्त्र नहीं बोलते कि व्यक्ति आत्महत्या कर लो। तो एक बात तो यहां भगवान ये बता रहे हैं कि इस अज्ञान के कारण तुम अपना धर्म करने में चूकोगे। आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज, एक चाणक्य पंडित का श्लोक मैंने सुना कि ना चिंते ना भोजनम चिंते, भोजन की चिंता मत करो। और फिर बोलते हैं धर्मम चिंतित, धर्म करने की चिंता करो कि धर्म करना है, धर्म करना है, धर्म करना है। जैसे एक घर में कहीं आग लगी हो या आपको पता है कि ये घर ढहने वाला है तो उसमें जितनी संपदा आप लेके भागेंगे, भागना, भागने का मौका मिलेगा, भागना चाहेंगे ना। ऐसे ही ये जो शरीर रूपी घर है ढहने वाला है। अब भी 5:05 पे मेरे को माँ ने कॉल किया और बोला कि एक माता जी हैं होम्योपैथी की डॉक्टर हैं, उन्होंने मेरे को कुछ ट्रीटमेंट दिया था, तो कुछ संबंध है। तो उनके पति अभी भुवनेश्वर जा रहे थे और उनको हवाई जहाज में ब्रेन हैमरेज हो गई। तो ये जो शरीर है, शरीर रूपी घर है, इस पर कब कुर्की हो जाएगी, कब ढह जाएगा, हमको नहीं पता है। तो इसलिए धर्म करने में व्यक्ति को बहुत आगे होना चाहिए। आप उदाहरण से समझ रहे हैं ना, घर वाले घर, क्योंकि धर्म करने का मौका पशु शरीर में नहीं मिलता है। समझते हैं ना इस बात को। स्वर्ग में भी चले जाएंगे तो आपको स्वर्ग में जाने के बाद भी भक्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन भोगों के कारण व्यक्ति भक्ति करता नहीं। ऐसा तो है कि इंद्र पूजा करते रहते लेकिन भोगों में बहुत आसक्ति होती है। तो ये मनुष्य शरीर है ये भक्ति करने के लिए बहुत श्रेष्ठ है, ना तो बहुत दुख है ना बहुत अधिक सुख है, तो व्यक्ति अपनी भक्ति कर सकता है। तो भगवान यहाँ बोल रहे हैं कि शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता, तो क्या नहीं मारा जाता, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमने इससे पहले आप लोगों को समझाया था कि आत्मा का एक विशिष्ट गुण है और वो क्या है, किसी को याद है? क्या बोला आपने? आनंद में रहती, आनंद में रहना चाहती। अभी तो आनंद में हम नहीं है, क्या है? चेतना। और चेतना कैसी है? वेदांत सूत्र में इसको बोलते हैं गुणाद आलोक आलोकवत। आलोक समझते हैं आप लोग, आलोक मतलब क्या होता है? रोशनी। और रोशनी का एक गुण बड़ा सिंपल सा है, अभी तो एक्सपेरिमेंट हम नहीं करना चाहते। एक बल्ब आप जलाएंगे, बल्ब वहां पे जल रहा है और पूरे रूम में प्रकाश हो रहा है। इसकी बहुत इंटरेस्टिंग इंप्लीकेशंस इस उदाहरण के। देखिए, बल्ब का आकार है ये नहीं है, सिंपल है, कोई बहुत फिलोसफिकल प्रश्न नहीं कर रहा हूं, आपके सामने दिख रहा है बल्ब का आकार है। बल्ब एक जगह लोकलाइज्ड है कि नहीं, लोकलाइज्ड मतलब उसी क्षेत्र में है कि नहीं है, लेकिन उसका आकाश सॉरी उसका आलोक निराकार है कि साकार है? निराकार है। क्या उसका आलोक सर्वव्यापी है या नहीं है? तो कोई वस्तु का प्रभाव सर्वव्यापी है इसका मतलब वो नहीं है कि वो वस्तु निराकार है। समझ आया? आत्मा, हम स्वयं भी, हमारा एक आकार है लेकिन हम अपने शरीर में सर्व रूप से व्यापी हैं अपनी चेतना के द्वारा। और वो चेतना किस प्रकार से है? रोशनी की तरह। अब आप देख सकते हो सकता है इस बल्ब के जो शीशा लगा हुआ है वो पीले कलर का हो और जो बल्ब है वो ओरिजिनली सफेद कलर का हो, और इसके आगे आप हरा, नीला और पीला कलर लगा सकते हैं, उसके अनुसार छन करके लाइट आएगी। बल्ब कैसा है? सफेद। छन के लाइट कैसे आपको दिखाई पड़ रही है? अरे पीली नीली। आपको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? हमारी चेतना गुणों से प्रभावित हो जाती है, आत्मा कभी भी गुणों का स्पर्श नहीं करती। Does it make sense? एक बात और, किसी को याद है कि हमने क्या बताया था कि चेतना का क्या गुण होता है? दो गुण, एक गुण नहीं बताया था, एक गुण बताया था, बहुत चर्चा किया था। ओके, तो आप लोगों को मैं नई बात बता रहा हूँ, जो बताया बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। चेतना का गुण है, पहला गुण है ये अवेयरनेस, ये भावना कि मैं हूं। आप लोग यहाँ पे हैं क्या? इस प्रश्न को मैं मृदंग से पूछ सकता हूँ या सोफे से पूछ सकता हूँ, इसमें बैठा हुआ हूं? आप जो ये कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप कॉन्शियस व्यक्ति हैं, अनुभव करने वाले व्यक्ति। सुनना ही बात, आप अपने बारे में जानते हो, मतलब आप हो, ये अनुभव करने की शक्ति आप में है, ये एक चेतना का गुण। और दूसरा, आप लोग क्या ये माइक हैं? ये माइक है, जानते हैं आप लोग? माइक नहीं है, यानी वो वस्तुएं जो आपसे भिन्न हैं, उनका अनुभव, उनका ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता, ये भी चेतना का गुण है। क्या ये माइक समझ रहा है कि मैं इसमें बोल रहा हूं? हाँ या ना? ये शक्ति नहीं है ना इसमें? तो चेतना के कौन से दो गुण हैं? अपने बारे में जानना और जो वस्तुएं हम नहीं हैं उनके बारे में जानना। अब इस पे बहुत विचार करने वाली बात, यही चीज बहुत विचारणीय है, बहुत इंटरेस्टिंग। जब ये चेतना दूषित होती है तब भी मैं अपने बारे में जानता हूं, तब भी मैं वस्तुओं के बारे में जानता हूं, लेकिन गलत तरीके से, गलत दृष्टिकोण से। जब मेरी चेतना दूषित होती है तो मैं क्या सोचता हूं? मैं शरीर हूं, मैं जगत का भोक्ता हूं, जगत का मालिक हूं, वस्तुओं का मालिक हूं और भोक्ता और नियामक हूं, नियंत्रक हूं। सोचते हैं कि नहीं सोचते? हमें गुस्सा कब आता है? जब चीजें ऐसी नहीं होती जैसे हम चाहते हैं। ये नियंत्रण का भाव है ना, भगवान को गुस्सा क्यों नहीं आता? क्योंकि सब कुछ भगवान के अनुसार ही होता है। तो हाँ, अब हमारी अशुद्ध चेतना होगी तो ये दो गुण किस तरह से परिलक्षित होंगे? मेरी हिंदी कठिन तो नहीं हो रही है? मैं शरीर हूं, मैं ही मानूंगा, अपने बारे में जानने की भावना, और जो आसपास दिख रहा है उसको मैं भोगता हूं, मैं भोगूंगा उसको, मैं उसको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं कंट्रोल करूंगा उसको। अच्छा, क्या जब चेतना शुद्ध हो जाती है तो हम वस्तुएं देखते नहीं है? क्या हम अपने बारे में नहीं जानते? जानते, बल्कि अपने बारे में जानना तब शुरू करते हैं जब चेतना शुद्ध हो। तो क्या चेतना शुद्ध होने का रिजल्ट है? मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, मेरा कर्तव्य है उनकी सेवा करना। वो कंट्रोलर हैं, वो प्रोप्राइटर हैं, मालिक हैं, और वो भोक्ता है। जैसे ये माला हमने पहनी हुई है तो ये माला हमने इसलिए नहीं पहनी हुई है कि हम सुंदर दिखेंगे, ये माला इसलिए पहनी है क्योंकि भगवान की जो अर्पित माला होती है उससे हम लोग माया से मुक्त हो जाते हैं। हमारे लिए दवा है और सौभाग्य है, दोनों ही बात। सौभाग्य हम उतनी मात्रा में मानेंगे जितनी मात्रा में ये मानेंगे कि ये भगवान से आ रही है। आ तो भगवान से ही रही है, उनका प्रसाद है, लेकिन जितनी मात्रा में हमारी श्रद्धा होगी अरे भगवान से आ रही है, उतनी मात्रा में हम उसको अपना सौभाग्य मानेंगे। लेकिन सौभाग्य मानने वाला या ना मानने, लेकिन सौभाग्य है हमारा। जैसे एक भक्त बता रहे थे, कविचंद्र महाराज जब प्रभुपाद जी प्रत्यक्ष रूप से थे तो उनकी माला अगर किसी भक्त को मिल जाती तो सुबह से शाम तक वो माला को पहने रहता था, रात में भी पहने रहता था, सौभाग्य मानते थे। तो ये बात 11वें स्कंद में आती है। हम बात क्या कर रहे थे? हाँ, तो हमारा दृष्टिकोण क्या हो जाता है शुद्ध चेतना में? जो भी वस्तुएं हैं वो किसकी हैं? कृष्ण। ईश्वर मत बोलिए क्योंकि फिर गड़बड़ हो जाता है। ईश्वर भगवान सब मत बोलिए, ईश्वर परमपिता परमेश्वर तो बड़ा गड़बड़ हो जाता है, कौन उसका निराकार भी आ जाता है बीच में। कृष्ण की है, भगवान कृष्ण की है, मैं समाज में लाख बार बोल रहा हूँ लेकिन जनरली ऐसे शब्द यूज कर लिए जाते हैं। तो भगवान कृष्ण की तो बहुत इंपॉर्टेंट है और वही इसके भोक्ता है, यानी उसका उपयोग उनकी सेवा में होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा दूसरा क्या था, कंट्रोलर। अगर ये समझ लिया कि भगवान कंट्रोलर है, आपके जीवन से बहुत सारा चिंता चली जाए, है ना। हम लोग थ्योरेटिकली स्वीकार कर लेते हैं लेकिन फिर भी लगता नहीं हम कंट्रोल में हैं, हम कंट्रोल में चीजें ऐसी क्यों नहीं हो रही हैं, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन अगर वाकई ये हम जितनी मात्रा में हम सबको स्वीकार कर लेंगे तो फिर कोई चिंता नहीं रहती। तो मैं खाली ये बोल रहा था, अब इन दोनों चीजों को भक्ति के प्रोसेस से जोड़ा जाए, इस जगत को देखने का नजरिया मेरे बुद्धि के ऊपर निर्भर नहीं करता, मेरे मन के ऊपर निर्भर नहीं करता, मेरी चेतना के ऊपर करता, और चेतना की शुद्धि डायरेक्टली हरे कृष्ण मंत्र से होती है। मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूं, चेतना की शुद्धि डायरेक्टली भगवान की भक्ति से होती है, भगवान का नाम जप करके, भगवान का प्रसाद खाके, भगवान के विग्रह की सेवा करके, भगवान का मंदिर माजन करके, कैसे भी भगवान की सेवा में नियोजित होने से हमारी चेतना अपने आप शुद्ध हो जाती है। तो अगर कोई व्यक्ति इतना मतलब विश्लेषण ना भी कर सके, अगर भगवान की भक्ति करता रहता है तो अपने आप उसकी चेतना जो बुरी चेतना है उस वो अच्छी चेतना से रिप्लेस हो जाती है और उसकी सेवा की भावना बढ़ जाती है भगवान की प्रति। सामान्य शब्दों में इस सारा विश्लेषण का अर्थ ये है कि भोग वासना की जगह सेवा की वासना या सेवा की इच्छा हमारे हृदय में बढ़ जाए और वो शुद्ध चेतना का लक्षण है। जैसे हमारे मंदिर में बहुत सारी माताएं, आपने देखा हो, आप लोग खैर के लोग आए हैं देखा होगा, बहुत सारी माताएं कई कई साल से बीसों साल से भगवान के लिए माला बनाते हैं, तो भले क्लास कभी दी भी नहीं और दें भी ना, लेकिन वो शुद्ध चेतना में स्थित हैं, भगवान का नाम जप कर रही हैं और भगवान के लिए सेवा कर रही हैं, और यही सेवा आध्यात्मिक जगत में मंजरियां कर रही हैं। या कुछ भक्त लोग कई सालों से भगवान के लिए कुकिंग कर रहे हैं। तो आप समझ रहे, भले ही वो फिलोसफी का बहुत आध्यात्मिक मतलब विश्लेषण ना कर सके, लेकिन क्योंकि भक्ति का प्रोसेस डायरेक्टली चेतना को शुद्ध कर रहा है, व्यक्ति क्रियाएं अपने आप ही परिवर्तित होती चली जा रही। अब एक भक्त ने प्रश्न किया था कि लोग समझते क्यों नहीं है, लोग विरोध क्यों करते हैं, स्पेशली अपने ही परिवार वाले विरोध क्यों करते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं विरोध क्यों कर रहे हैं, चेतना दूषित होने के कारण वो क्या सोच रहे हैं। इस स्पीकर में, इस व्हाटएवर JBL के मिक्सर एम्पलीफायर के द्वारा डिस्को बजना चाहिए और सब लोग डिस्को करना चाहिए, और भक्त क्या सोच रहा है, डिस्को तो होना चाहिए लेकिन हरे कृष्ण डिस्को होना चाहिए। तो दोनों की चेतना में जब जमीन आसमान का अंतर है तो डेफिनेटली जमीन आसमान मिलते कहाँ, मिल जाते हैं ऐसे लगता है मिलते हैं, वो नेपथ्य बोलते क्या बोलते हैं क्षितिज में, हाँ क्षितिज में बोलते, लेकिन वो मिलते मिलते कहीं नहीं। तो केवल एक ही तरीका है, ऐसे में दो तरीके होते हैं, या तो आप चुपचाप मतलब अपना भजन करते रहिए, छुपछाप छुपते हुए जब भक्ति करते रहिए, और दूसरा कि उनको बोले कि भाई हम तो ऐसे ही वापस करेंगे। एक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि क्या भौतिकतावादी व्यक्ति हमारे लिए परिवर्तित हो रहे हैं, तो नहीं, तो हम उनके लिए क्यों परिवर्तित हों, क्या वो हमारी मृत्यु के समय मदद कर सकते हैं। जैसे अभी वो पत्नी है, माता जी, जिनके पति को ब्रेन हैमरेज हो गया है, अब वो रो ही तो सकती है ना, उससे अधिक कुछ कर सकती है। और यही अगर उनके संग हो जाता तो पति क्या करते, थोड़ी देर रो लेते अगर अगर उनको अच्छा लगता तो, या तो रोते या हंसते, वो बना नहीं, लेकिन हमको समझ में आना चाहिए कि कितने अशक्यता है हमारे आसपास के लोगों में मृत्यु से या व्याधि से भी बचाने की। कभी कभी ऐसी बीमारी हो जाती है कुछ भी नहीं कर सकते, सारा पैसा होने के बाद भी कुछ नहीं कर सकते। तो भगवान इस बात में, इस श्लोक में बोल रहे हैं कि अपने शाश्वतता को समझो। अब इसको दूसरे एंगल से आप देखिए, कितने लोग बस में ट्रेवल किए, हाथ खड़ा करने की जरूरत नहीं, सब लोग नहीं किए। कभी कभी आपको बस में सीट नहीं मिलती, मान लीजिए यहाँ से आगरा जाना है, डेढ़ घंटे का सफर है, तो आप क्या सोचेंगे, काश मैं बस का ड्राइवर बन जाता है तो हमेशा मुझको सीट मिलती। कभी सोचा है विचार किया कंडक्टर तो बन जाता। देखो उसको कितना भाग्य है, वो कंडक्टर बन गया है, उसको सीट मिली हुई है। क्या विचार आता है, अरे अब खड़े होके जाएं या बैठ के जाएं, अब डेढ़ घंटा काटना है वहां पहुंचना है। आपने मेरी उदाहरण बहुत मजाक वाला है लेकिन आप लोग बात समझ रहे होंगे मेरी। चाहे आप एक बड़े घर में रह के सोइए, चाहे एसी रूम में सोइए, चाहे आप कूलर में सोइए। और कभी आप देखा है लोग वृंदावन में, आप देखते हैं भिखारी लोग जमीन पे सो जाते हैं। हम जमीन पे भिखारी बनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, प्रैक्टिकल बातें बोल रहे हैं, लेकिन केवल अपनी चेतना को आहार निद्रा भय मैथुन में अभिनिवेशित करना ये मूर्खता है। अगर आप यहां से लेकर मान लीजिए आगरा जा रहे हैं, आगरा जाके आपको 2 करोड़ रुपए मिलेंगे, तो उन 2 करोड़ रुपयों के बारे में सोचेंगे या आप सोचेंगे मेरे को सीट मिली या नहीं मिली? मैं ऐसे एग्जाम्पल लेता हूँ तुरंत आदमी को समझ में आ जाता है, नहीं सोचेगा ना व्यक्ति। तो ऐसे ही भगवान जिस परिस्थिति में हमको रख रहे हैं भौतिक रूप से, उसमें बहुत अधिक प्रतिकार किए बिना, मैं बहुत अधिक प्रतिकार शब्द क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए अगर आपका शरीर में बहुत कष्ट है तो उसका निवारण करना आवश्यक होता है, क्योंकि हम शरीर के द्वारा ही भक्ति करते हैं। लेकिन धन के लिए बहुत अधिक भागना और उसके लिए अधर्म करना ये बहुत गलत है, क्योंकि उससे आगे जा करके हमको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। चाहे जैसे कभी वही बस वाला उदाहरण लें, हम सोचे कि बिना टिकट हम यात्रा कर लेंगे, हो सकता है कि कंडक्टर आपको बाद में पुलिस को पकड़ा दे। ऐसा होता नहीं है भारत में, अगर ऐसा रूल तो है कम से कम इस प्रकार से। तो अधर्म नहीं करना चाहिए, और धर्म और अधर्म का ज्ञान लेने का दायित्व, प्राप्त करने का दायित्व मनुष्य में हमको दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है अगर हम लेना चाहें तो। ठीक है, तात्पर्य अब क्लास शुरू कर रहे हैं। गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अणु अंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। कभी कभी आत्मा को स्थायी या कूटस्थ कहा जाता है। शरीर में 6 प्रकार के रूपांतर होते हैं। वह माता के गर्भ से जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न करता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत में समाप्त हो जाता है। किंतु आत्मा में ऐसे परिवर्तन नहीं होते। आत्मा अजन्मा है, किंतु चूंकि वह भौतिक शरीर धारण करता है अतः शरीर जन्म लेता है। आत्मा न तो जन्म लेता है न मरता है। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है, और चूंकि आत्मा जन्म नहीं लेता अतः उसका न तो भूत है न वर्तमान या भविष्य। अब इसी चीज को देख लीजिए, हम लोग पूरा समय क्या केवल भूत और भविष्य के बारे में नहीं सोचते रहते? और ये भी बड़ा सूक्ष्म तरीका है माया का हमको पकड़ के रखने का। जैसे आप जप कर रहे हैं और आपको विचार आता है 5 साल पहले जब आप भक्ति में नहीं थे तो आप कुछ पाप किए, तो क्या उस पाप का आप कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते। क्या गारंटी दे सकते हैं कि 5 दिन के बाद कोई पाप नहीं करेंगे? कोई गारंटी नहीं। जिस क्षण में हम अभी हैं उस समय हमें कृष्ण की शरण लेनी है। ये बात बहुत गंभीरता से सुनिए। ये जो क्षण अभी हमारे पास है राइट नाउ, ये समय, इसमें हमें कृष्ण की शरण लेनी है। मैं अब क्यों लेनी है मैं इसी संबंध में बताता हूँ। पाप के संबंध में एक एडवोकेट को मैं प्रीचिंग कर रहा था तो मैंने बोला, क्या आप अपने क्या बोलते क्लाइंट्स को नहीं बोलते हैं तुम मेरी शरण में आओ मैं तुम्हें सारे अपराधों से मुक्त कर दूंगा? अमेजिंग था कि वो एडवोकेट को बोलते समय मुझे एकदम से ये बात आ गई, कहते हाँ मैं ऐसा बोलता तो हूँ, इसीलिए मेरे क्लाइंट मेरे पास आते हैं। और आप समझ रहे हैं ना कौन सा श्लोक है भगवद गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अभी वकील अपराध से मुक्त कर नहीं सकता है, खाली अपराध को छुपा सकता है, भले ही इस जज से बचा ले लेकिन यमराज जी से नहीं बचा सकता, लेकिन फिर भी भाषा का उपयोग ऐसा करता है। तो वो व्यक्ति अपने अपराध से खुद बचने का प्रयास करता है क्या? क्या करना बुद्धिमानी है? नहीं। लेकिन अगर एक योग्य व्यक्ति के पास जाता है तो अपराध से एटलीस्ट सजा पाने से मुक्त हो जाता है, और अगर प्रेसिडेंट के पास जाके गिड़गड़ाए तो सजा भी नहीं मिलती है। अब भगवान की शरण जाने से क्या होता है? भगवान कहते हैं जो तुमने पहले कोई भी पाप किया है, जो कुछ भी है, अपनी चेतेसी पाप के भ्या सर्वे भ्या पाप कृतमा, तुमने कितना भी कोई पाप किया हो, अगर तुम इस ज्ञान रूपी नाव में बैठ जाते हो, कौन सा ज्ञान? मैं हे कृष्ण, मैं आपका हूँ, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, कृपया मुझको स्वीकार कर लीजिए। एक बार भी जीवात्मा अगर ऐसा कृष्ण के सामने करते हैं, प्रणाम करके ऐसा बोलते हैं हृदय से, तो भगवान कहते हैं ऐसे व्यक्ति को मैं कभी भी नहीं त्याग सकता। सकृत एव प्रपन्न आयो तवास्मि इति याचते ददामि एवं मृतम मम अभयम ददाति अभयम सर्व ददाति सर्व अभयम सर्वदा ददाति से करके श्लोक आ रहा है, भूल रहा हूँ, तस्मै ददाति एवं मृतम मम अभयम सर्वदा, हाँ अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एवं मृतम मम। भगवान श्री राम का वक्तव्य है, जब विभीषण उनकी शरण लेने के लिए आकाश मार्ग से आए थे, सब लोग सोच रहे थे कि अरे राक्षस है, इसको पकड़ लेना चाहिए, तो जान से मार देना चाहिए, ये कोई माया करने के लिए आया है। तो भगवान राम सबसे कंसल्टेंसी ले रहे थे, तो फिर अंत में उन्होंने हनुमान जी को पूछा, तो हनुमान जी ने बोला कि हमें पूछ देखना चाहिए कि वाकई ये हमसे धोखेबाजी करने के लिए आए हैं या शरण लेने के लिए आए हैं। और फिर भगवान राम कहते हैं ये सत्यवाद, क्योंकि मैं अपनी शक्ति से सारे असुरों का वध कर सकता हूँ, मुझे इसे कोई भय नहीं, लेकिन अगर ये मेरी शरण लेने के लिए आया है तो फिर श्लोक बोलते हैं सकृत एव प्रपन्न आयो तवास्मि इति याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददाति एवं व्रतम मम। भगवान राम कह रहे हैं, भगवान राम भगवान कृष्ण एक ही बात, कि मेरा ये व्रत है कि व्यक्ति एक बार भी मुझे अगर बोल दे कि भगवान मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आया हूँ, कृपया मुझे स्वीकार कर लें, तो भगवान उसे कभी भी नहीं त्यागते, जन्म जन्मांतर के लिए स्वीकार कर लेते। लेकिन ये भावना आती नहीं है लोगों की शुरुआत में, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं अगर ऐसी भावना ना हो तो व्यक्ति कम से कम हरे कृष्ण मंत्र का जप करे तो भगवान की शरण में वो आ पाएगा। और आपका हूं मतलब एक और अर्थ है इसका, कि भगवान मैंने कई कई जन्मों से अपनी इन काम इच्छाओं की पूर्ति कर ली है, सेवा कर ली है, और मैंने ये भी देख लिया है कि इनकी कोई कृपा नहीं हो रही है, ये कोई संतुष्ट नहीं हो रही है, तो अब मेरी बुद्धि आ गई है माम नेम स्वात्म दास, ये भगवान मुझे आप अपने दास के रूप में सेवा का मौका दे हैं, यही हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ है। एक भक्त ने पूछा प्रभु जी को, अगर राम राम करता है तो गलत है क्या? क्या बोला जाएगा? बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें भगवान से सेवा की प्रार्थना नहीं है। हरे कृष्ण मंत्र का क्या अर्थ है? हे श्रीमती राधारानी, हे हरा, मुझे कृष्ण की सेवा में नियोजित कीजिए। भले ही हम इसका हम मतलब इसका ना समझे, भगवान तो मतलब समझते हैं ना, तो इस मंत्र को बार बार बोलते 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 जो हृदय से नाम उच्चारण करने का मतलब होता है, इस भावना से भरी हुई हरि नाम करना। कौन सी भावना से? हे कृष्ण मुझे स्वीकार कीजिए, हे कृष्ण मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, और इस मंत्र के प्रभाव से ही ये भावना हृदय में जागृत होने लगती है। लेकिन मैं इधर चला गया, मैं बात क्या कर रहा था मैं भूल गया। खैर, हम वर्तमान और भविष्य की बात कर रहे थे, तो मैं यह बात ही कर रहा था कि इस क्षण में हम कृष्ण की शरण ले सकते हैं। और कृष्ण की शरण लेने का भगवान अर्थ बहुत क्लियरली बता रहे हैं, मनमना भव मत भक्तो मत याजी माम नमस्ते। और ये जो शरणागति का प्रोसेस है, ये क्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण प्रतिक्षण, मनमना ये तो नहीं बोल रहे कि केवल सुबह स्मरण करो, स्टैंडर्ड क्या है, हर क्षण मेरा स्मरण करें। हर क्षण कैसे स्मरण होगा, अगर इस क्षण स्मरण करते हैं और अगले क्षण स्मरण करते हैं और अगले क्षण स्मरण करेंगे तो अगले फिर अगले और ऐसे करते चले जाएंगे तो फिर हर क्षण हो जाएगा। तो कहेंगे ये तो बहुत मुश्किल है, कृष्ण का स्मरण करेंगे तो हम काम कैसे करेंगे। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है। राजस्थान का एग्जाम्पल आपको हम देंगे, राजस्थान में जब और ऐसी जगहों में आप चले जाएं जहाँ पे बहुत सूखा रहता है, तो माताएं घड़े में पानी लेके जाती हैं और हाथ में बच्चा होता है और घड़ा घड़े को हाथ से भी सपोर्ट नहीं करती हैं और बगल में बातें भी करती रहती हैं। आप लोगों का ऐसा अभ्यास है, आप लोगों का ऐसा अभ्यास नहीं तो कहेंगे ऐसे कैसे हो सकता है, या तो घड़े घड़े को तो हाथों से पकड़ना पड़ेगा, बच्चे को पकड़ना, उसके बाद हाथ ऊपर सर में मटका रखना और फिर बातें भी करते रहना, इतना अजीब सा लगता है। तो प्रभुपाद जी इसको उदाहरण दिया करते थे। तो जब भगवान की प्रीति होती है तो मति भगवान में लगी रहती है और व्यक्ति जगत के कार्य करता रहता है। इसी बात को भगवान बोलते हैं माम अनुस्मर युद्ध च, क्रियाएं एक्सटर्नली शिव की कर रहा है लेकिन उसका चित्त भगवान में आविष्ट रहता है। अब इसका भी कोई आपको अनुभव ना हो ऐसा नहीं है, जैसे आप सब लोग जब करते हैं, उम्मीद है एक माला तो कम से कम करते होंगे, तो जब तो कर रहे हैं और मन कहाँ जा रहा है, उन वस्तुओं में, उन कार्यों में जिनमें आपकी आसक्ति है, उन व्यक्तियों में जिनकी आपकी आसक्ति है। डज इट मेक सेंस? अब यही नाम करते करते रिवर्स हो जाएगा कि आपका चित्त जो है भगवान में लगने लग जाएगा और कार्य बाहर के होते रहेंगे। ऐसा प्रहलाद महाराज और महान भक्तों के संग होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु भगवान है ही लेकिन भक्त के रूप में भी वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं कि खाना पीना सोना वो खाली एज अ हैबिट कर रहे थे। हम लोग भक्ति एज अ हैबिट करने लग जाते हैं, हरे कृष्ण निपटाना है, हाँ हो गया बस खैर कोई बात नहीं, करे ऐसे ऐसे करते करते वह आगे बढ़ेगा, लेकिन स्थिति आनी चाहिए, इन स्थिति के बारे में सुनना तो चाहिए ना, और ये भी नियमित रूप से सुनना चाहिए। अभी हमने एक नया ग्रुप और शुरू किया, हर बार हम नए ग्रुप शुरू करते रहते हैं, नए नए संगठन आंदोलन, ये भागवतम लेक्चर्स का ग्रुप है, ये कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है जिसमें जो हम परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के लेक्चर्स हैं वो पोस्ट करते हैं। अगर कोई एक भक्त भी ग्रुप में सुन कर लेता है तो फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा, तो अपने समय में आप समय निकाल करके सुन सकते हैं। इसके लिए ही शरीर है और ये बहुत गंभीर बात है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान के बारे में ना सुनने की प्रवृत्ति होने के कारण ही हम जन्म जन्मांतर जन्म ले रहे हैं। इसलिए जन्म ले रहे हैं ना सुनने के कारण, क्योंकि सुनने के कारण ही भौतिक इच्छा आती है, मैंने पिछली बार भी बताया, और भौतिक इच्छा जब तक रहेगी एक जन्म से दूसरे जन्म से दूसरे जन्म होता रहेगा। और इसका जैसे विपरीत, अगर हरि कथा सुनेंगे, हरि नाम सुनेंगे तो भौतिक इच्छा कम होती है और आपको ब्रेक लगना चालू हो जाता है। भले ही गाड़ी ब्रेक लग के तुरंत ना रुके, लेकिन आप ये समझ में आना चाहिए कि अब कुछ समय के बाद गाड़ी रुक जाए। हम शरीर के प्रभाव में आकर आत्मा के जन्म मरण आदि का इतिहास खोजते हैं। आत्मा शरीर की तरह कभी भी वृद्ध नहीं होता, अतः तथा कथित वृद्ध पुरुष भी अपने बालकाल या युवावस्था जैसी अनुभूति पाता है। बहुत ही गंभीर बात है ये, लाइन बहुत गंभीर है। क्यों गंभीर है? इसको भागवत में बोला गया है अजरम पाशम, बहुत कठोर बातें आने वाली हैं। कोई व्यक्ति अगर अपने काम क्रोध लोभ का ट्रीटमेंट भक्ति के द्वारा नहीं करता है तो ऐसा मत सोचिए कि वृद्धावस्था में कम हो जाता है। आप सत्याना कर समझते हैं, और कितने तो 7 लाख 7 साल के होंगे नहीं, लेकिन सठियाने का अर्थ क्या होता है? मैं मजाक में नहीं बता रहा हूँ, सठियाने का अर्थ ये होता है, कारण क्या होता है, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। क्यों होता है? उसने जीवन भर भोग का अभ्यास किया है, उस समय इंद्रियां सपोर्ट करते हैं, अब भोग की वासना तो है और इंद्रियां अब सत्याग्रह आंदोलन पे आ जाती है कि हम अब बहुत अब नहीं कर सकते, तो फिर व्यक्ति फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो भी देख रहा है कि परिवार वाले उसी के पैसे से खूब मौज कर। जैसे अभी मैं आऊं यहाँ प्रभु जी हमको बहुत अच्छा प्रसादम खिलाते हैं, सब भक्त खाएं और मेरे को खाने को ना मिले, यार मैं ही आ रहा हूँ, मतलब सब मैं सबको लेके आ रहा हूँ, मेरे को खाने को नहीं मिल रहा, मैं नहीं खा पा रहा, सब लोग खा रहे हैं, तो नेचुरल है कि आपको अगर इस प्रकार की वासना रहेगी तो ये बहुत गंभीर बात है। तो यानी कि अगर हम भक्ति का अभ्यास नहीं करते तो भौतिक वासनाएं कम क्या बढ़ जाती हैं, बढ़ती जाती। मरते समय तक मैंने अपने नाना जी को देखा था, मरते समय तक मैंने सुना ऐसा कि उनके क्षण क्षण में इच्छा खत्म चेंज हो रही थी, अरे पकौड़ा खाना है, अरे ये करना है, अरे वो करना है, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। देखिए अगर हम जीवन भर आहार निद्रा भय मैथुन में लगे रहेंगे तो मृत्यु के समय भी हम इन्हीं के बारे में सोचेंगे। ये चीज बार बार समझिए, इस बात को, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भगवद गीता क्लास दे रहा था, कोई काफी सीनियर भक्त थे, मतलब अड्डी सीनियर से बाल उनके पक गए थे और बोल रहे थे प्रभु जी काम जो है वो अग्नि की तरह जलता रहता है, क्या करा जाए इसका। तभी मैं समझ गया था कि एक ये प्रॉब्लम जो है ये केवल बाल पकने से नहीं जाती, क्या पिछले जन्म में हम बुढ़े नहीं हुए? हुए थे ना, फिर हृदय में काम क्यों है? अभी काम कटता है भगवान की भक्ति करने से, अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करने से, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी बीमारी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो आत्मा क्योंकि कभी वृद्ध नहीं होती है और उसका मन भी वृद्ध नहीं होता है, उसकी बुद्धि भी वृद्ध नहीं होती है, और मन में बुद्धि में और इंद्रियों में भी ये भोग वासना लगी रहती है, लस्ट पड़ी रहती है, इसका ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए जल्दी से जल्दी। इसका इंटरेस्टिंग है कि ट्रीटमेंट जो है ये भी आहार निद्रा भय से होता है। आहार निद्रा भय ही प्रॉब्लम है और आहार निद्रा भय से ही ट्रीटमेंट होता है। भय किस बात का? अरे मैं भक्तों का संग करूंगा, अभक्तों का संग करूंगा तो व्यक्ति छूट जाएगी, ये बहुत बड़ा फायदा है क्योंकि आप असत संग से दूर रहेंगे। तो भय का उपयोग किया ना, आहार तो आप सब जानते हैं, भगवान का प्रसाद खाई, और निद्रा, निद्रा तो आप समझ रहे हैं, निद्रा नहीं सोएगा नहीं तो शरीर कैसे चला पाएगा। तो क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती, भक्ति में आने के बाद भी आप लोगों की क्रियाएं परिवर्तित नहीं होती हैं, उद्देश्य परिवर्तित हो जाने के कारण उसका प्रभाव परिवर्तित हो जाता है। Does it make sense? आप लोगों को लग रहा होगा मैं बातें रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन देखिए मैं बार बार जब प्रश्न करता हूँ तो आप लोग भूल जाते हैं और मैं इसके लिए दोष नहीं दूंगा। धीरे धीरे बातें ये आप लोग अच्छे से जब करते रहेंगे और सुनते रहेंगे बार बार तो फिर आपको बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। और केवल समझ में आना महत्वपूर्ण नहीं है, उसकी हाउ टू से उसकी महत्व अपने जीवन में समझना, धारण करना ही बहुत इम्पोर्टेंट। ओके 10 मिनट है तो हम देखते हैं पूरा कर पाएंगे कि नहीं। ओके शरीर के परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आत्मा वृक्ष या किसी अन्य भौतिक वस्तु की तरह शीर्ण नहीं होता, आत्मा की कोई उपसृष्टि नहीं होती, शरीर की उपसृष्टि संतानें हैं और वे भी व्यष्टि आत्माएं हैं और शरीर के कारण वे किसी न किसी की संतानें प्रतीत होती हैं। इसके ऊपर बहुत इंटरेस्टिंग बात जो मैं पहले बता रहा था आपको वो पूरा नहीं कर पाया। ओके लाइट वाला एग्जांपल्स क्या दिया था मैंने, बल्ब का क्या है, पहले बल्ब का गुण बताइए, आकार है और शक्तिमान है, अपनी जगह पे स्थित है एक छोटी जगह पे, लेकिन उस जगह से पूरे रूम को आलोकित करना, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो मायावादी लोग हैं वो कहते हैं कि ब्रह्म जो है उसमें ये दो गुण नहीं है, अपने बारे में जानना और अपने से भिन्न वस्तुओं के बारे में जानना, ये गुण नहीं है। अब ये बताइए, ये गुण तो माइक में भी है ना, माइक जानता है कि ये माइक है, माइक जानता है कि शुक्रेश दास जी से बोल रहे हैं, तो आप माइक बनना चाहते हैं। एसेंशियली कहने का अर्थ ये है कि आत्म साक्षात्कार के बाद आप पत्थर बन जाओ। तो आप लोग को बोलूं भाई आप हरे कृष्णा जप करिए तो ये फायदा क्या होगा, आप लोग पत्थर बन जाएंगे। तो अहल्या कौन बनना चाहता है, पत्थर की मूर्ति? तो ये है निराकारवादियों का जीवन का उपलब्धि। ऐसी उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं या आप ऐसी चेतना चाहते हैं जिस चेतना में, शुद्ध चेतना में आप कृष्ण के संग खा सके, बातचीत कर सके, डांस कर सके? तो ये मूर्ख व्यक्ति है वो निराकार की उपासना करे। मैंने इससे पहले भी बात करा था, आप भगवान के बारे में नहीं जानोगे तो सेवा नहीं करेंगे ना, और आपको ये बताया जाए कि भगवान निराकार है तो आप उनकी सेवा कैसे करेंगे? तो आपके ज्ञान में परिवर्तन क्या है? आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप पहले भगवान के बारे में नहीं जानते थे तो आप भगवान की सेवा नहीं कर रहे, नो प्रॉब्लम। गुरुजी ने ज्ञान दिया, कोट अनकोट गुरुजी, कि भैया बेटा परम पिता निराकार है, तो निराकार है तो उसकी सेवा क्या करेंगे? तो अब जीरो से चल के जीरो पे रहे ना। और फिर हम लोग क्या सोचते हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारतीय समाज में ये बीमारी बड़ी फैली हुई है, असली चीज तो निराकार है ना, सुना है ना कई बार, असली तो निराकार है, ये तो भावुकता है, माता जी लोग हैं, ये भावुक हैं, इसलिए अब ये साकार रूप लेकर रहे, असली तो निराकार। और फिर क्या करेंगे, बस मैं और वो एक ही है, फिर क्या, बस तो सेवा करने की जरूरत नहीं। तो सेवा तो आप पहले ही नहीं कर रहे। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेरी बहन की सास से मैं बात कर रहा था, तो वो पहले भक्ति करती थी, एकादशी व्रत पालन करती थी, और निराकार निरंकारी कैंप ज्वाइन कर लिया, खुद बोलती हैं अब कुछ व्रत पालन नहीं करना, एकादशी नहीं करनी, बस बढ़िया खुश थे। हमने कही तो आप फिर तो आलस्य में सिद्धांत ऐसे, तो भाई जो लोग भगवान के बारे में नहीं जान रहे हैं, तो यानी कि अपने को आध्यात्मिक मानना होना नहीं, ये धोखेबाजी है ना, धोखेबाजी। ऐसे मैंने मजाक किया, पार्थ प्रभु आप कौन सा मृदंग बजाएंगे? तो पार्थ प्रभु भक्त है, ईमानदार है, प्रभु मेरे को मृदंग बजाना नहीं आता, करतार पकड़। लेकिन अगर पार्थ प्रभु सोचे कि नहीं मैं मृदंग बजा रहा हूं और बजाए भी नहीं, तो क्या ये बेईमानी नहीं है? मैं यहां पे लेक्चर ना दूं और मैं बोलूं कि मैं लेक्चर दे भी रहा हूं, चलिए वो छोड़ दीजिए, माता जी हमारे प्रसाद बनाए नहीं, और बोले हम प्रसाद तो बना रहे हैं और बहुत अच्छा बना रहे, खिला रहे, सेवा भी कर रहे। ये आपको मजाक की बात लग रही है, ऐसे कितने लोग हमको मिलते हैं, प्रभु जी सांस सांस में हरि नाम हो रहा है, मन में सेवा हो रही, होता है ना, सेवा कर नहीं रहे हैं, खाली हम सोच रहे हैं कि सेवा कर रहे हैं। और उनसे पूछो कि किसका स्मरण कर रहे हो, किसकी सेवा कर रहे हो, परम पिता परमेश्वर कौन है? तो निराकार। जिस प्रकार से कोई मृदंग बजाए नहीं और बोले कि मैं मृदंग बजा रहा हूं तो आप उसको झूठा मानेंगे, कोई लेक्चर दे नहीं और बोले लेक्चर दे रहा हूं झूठा मानेंगे, और कोई व्यक्ति खाना दे नहीं और बोले खाना दे रहा हूं झूठा मानेंगे, तो व्यक्ति अगर कोई सेवा करे नहीं और बोले मैं मनी मन में कर रहा हूं या ऐसा कुछ मैं भी सेवक हूं, मैं भी अध्यात्मवादी हूं, तो क्या आप झूठा नहीं मानेंगे इसको? क्या हम भी ऐसे झूठे अध्यात्मवादी बनना चाहते नहीं। अर्जुन यहां युद्ध करते हुए भी अध्यात्म का अध्यात्मवादी है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा को वो पूर्ण कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लक्षण बड़ा सा बोलते हैं कि अर्जुन को भगवान ने गीता का उपदेश इसलिए नहीं दिया कि पहले हरे कृष्ण कर रहे थे, वो तो है ही, कृष्ण का स्मरण तो कर रहे थे, भगवान के लिए सेवा भी कर रहे थे, भगवान के इस उद्देश्य मिशन को में भाग ले रहे थे, बहुत इंपॉर्टेंट, मिशन से भाग नहीं गए थे। जो कि भी भागना चाहते हैं, भगवान ने भागने नहीं दिया, भाग लेने के लिए बोल रहे, तो बहुत अंतर है। ये भी एक, मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन इंटरेस्टिंग बात है कि जब हम भगवान की सेवा करते हैं और कुछ कठिनाई आती है, मान लीजिए भक्तों के बीच में कुछ कठिनाई आती है या कुछ ऐसे भी फिजिकल प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग जनरली अपना तौलिया फेंक देते हैं, मतलब वी ड्रॉप आवर टॉवल्स, कहने का मतलब है उस सेवा को छोड़ देते हैं। ये नहीं करना चाहिए। इसी बात को भगवान ने बताया था कि जगत पे सुख दुख आता है, आप उसे सहन करना सीखो। क्या अर्थ है? सुख दुख आने के बावजूद भी अपनी सेवा को बरकरार रखिए, अपना नाम जप, नाम व्रत। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि व्रत का मतलब ही है कि आप संकल्प लेके कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अभी आपको क्या लग रहा है, कैसा लग रहा है। जैसे आप एकादशी व्रत करते हैं तो अच्छा लगता है करना, भूखा रहना अच्छा लगता है? पर मेरे को तो नहीं अच्छा लगता, हम लोग सोचते रहते हैं एक कब बजेगा, कब प्रसाद आएगा। आज तक कभी एकादशी पे अटेंडेंस लगाने की जरूरत नहीं पड़ी प्रसादम के लिए, वैसे भी लगाना नहीं पड़ता। तो लेकिन हम व्रत का पालन करते हैं, उसी प्रकार से नाम का व्रत लेना चाहिए। और इससे बड़ा कोई व्रत नहीं है, इससे बड़ा अज्ञान नाश करने का कोई तरीका नहीं। ये सारी क्लासेज जो हम सुनते हैं इसीलिए ताकि हम हरि नाम को ठीक प्रकार से कर सकें। अगर क्लास को सुन करके हम एक इसको दार्शनिक विश्लेषण अच्छा या बुरा सोच करके छोड़ देंगे तो काम नहीं बना। अभी जैसे हम लोग कीर्तन करने वाले हैं तो सब उत्साह के संग नाम उच्चारण करें, आप वो करते ही हैं, लेकिन समझते हुए कि ये आत्म साक्षात्कार का तरीका है, ये हम नहीं समझ पाते कभी। जनरली हम आत्म साक्षात्कार शब्द यूज करेंगे तो आपको लगेगा ओम शांति, ध्यान लगाओ, तपस्या करो। ये हमारे कलयुग के लोगों को ब्रेन में घुसता नहीं है कि हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा ही सारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। किसी को याद है एग्जाम्पल मैंने लास्ट टाइम जो दिया था, सूर्य वाला एग्जाम्पल? हाँ, क्या एग्जाम्पल? सूर्य होता है और ये तो सबको याद है। और जैसे आप बहुत सारे बल्ब जला करके भी रात्रि को नष्ट नहीं कर सकते, उसी प्रकार से बहुत तपस्या करके भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान की भक्ति करके बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाता है। इसके ऊपर बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। आप में से कितने लोग पुल को पुल क्रॉस किए हैं? हाथ उठाने की जरूरत नहीं, सबने क्रॉस किए। कितने लोगों ने पुल का निर्माण किया? आप नहीं है? अच्छा, चलिए एक व्यक्ति मिल गए, मुझे लगा था कोई हाथ नहीं उठाए। तब पुल का निर्माण करना आसान है कि पुल को क्रॉस करना? अब बोले भाई तुम दूसरे का पुल क्यों बना रहे हो, क्रॉस कर रहे हो? अपना पुल खुद बनाओ, तुम कमजोर व्यक्ति हो क्या? सुने अपने इस तरह के प्रवचन? तुम, हम अपना पथ स्वयं बनाएंगे मुक्ति के लिए। यथा मत तथा पथ, जैसा आपका मत वैसा आपका पथ। लेकिन वो पथ कहां लेके जाएगा? यथा मत तथा पथ ठीक है, वो तो पहले से ही है, लेकिन वो पथ कहां लेके जाएगा? और बहुत सुंदर बात है, अमित ब्रो आपकी गाड़ी का नाम, कौन सी गाड़ी आपकी? लीनिया। हाँ, लीनिया। लीनिया से अमित प्रभु पुल क्रॉस कर सकते हैं। प्रभु आपकी गाड़ी का नाम क्या है? हाँ, महेंद्र जी। महेंद्र जी से पुल का आश्रय लेकर के क्रॉस कर सकते हैं। मेरे पास प्लैटिना है, टवेरा मेरी गाड़ी नहीं है, मंदिर की गाड़ी है, टवेरा मान लीजिए। बैलगाड़ी से भी क्रॉस कर सकते हैं, चींटी भी क्रॉस कर सकती है। बहुत ही प्रेरणादायक बात। भौतिक संसाधन अच्छा हो या एकदम नहीं हो, थोड़ा समय अधिक लग सकता है या कम समय लग सकता है, लेकिन जो पुल का आश्रय ले लेता है वो निश्चित पार कर सकता है। आप समझ रहे हैं? और वो पुल आपने नहीं बनाना है। समझ रहे हैं मेरी बात? ये बात श्रीमद् भागवत में है। महान आचार्य जो हैं, रघुपाद जी, चतन महाप्रभु बता रहे हैं, नाम संकीर्तन ए परम उपाय। परम मतलब क्या होता है बताए? इससे परे कुछ भी नहीं, इससे परे ना कोई तपस्या है ना कुछ भी नहीं। और उपाय का अर्थ है कि भाई ये सारे अनर्थों का नाश कर देगा, सब कुछ खत्म होगा और भगवान के धाम की प्राप्ति होगी। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। भगवान अपने श्रीमुख से स्वयं बोल रहे हैं, स्वयं अपने आचरण के द्वारा सिखा रहे हैं, हरिनाम का आश्रय लो, हरिनाम का जप करें, संकीर्तन करें, और इसके द्वारा अपने जीवन को इस जन्म में सफल बनाएं और भगवान के धाम की प्राप्ति करे। तो फूल वाला उदाहरण अगली बार पूछा जाएगा, अगर किसी को प्रसाद चाहिए तो भूल जाएगा, उसको प्रसाद नहीं मिला। सब लोगों को कॉपी में नोट कर लीजिए, एक्चुअली नोटबुक लाना चाहिए ताकि कुछ तो नोट कर लें, आपको पुल ही याद रह जाए कम से कम, तो जब करते रहेंगे। अब कोई व्यक्ति मान लीजिए पुल पे खड़ा हो गया तो फिर क्या करेंगे, फिर अब क्या कर सकते, फिर तो कुछ नहीं कर सकते। तो करने या सोचने लगे पुल लंबा लग रहा है, वाकई ये पार करेगा कि नहीं, ये वो देखने लगे नदी तो बहुत गहरी है, इतनी गहरी नदी ये पुल कैसे क्रॉस करवा सकता है, समझ रहे हैं मेरी बात। यानी कि पुल क्रॉस करने में केवल एक ही डिफिकल्टी है और वो क्या है, संदेह। मैंने पहले भी बताया था, मैंने नहीं भगवान गीता बता रहे हैं, अश्रद्धानः पुरुषो धर्मस्यास्य परंपर अप्राप्त माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तन। अश्रद्धा मत रखिए, संदेह मत करिए, करते रहिए। और मैं सिलास बात बोल खत्म करूंगा कि देखिए अगर आपके घर वालों को प्रॉब्लम हो रही है कि आप भक्ति कर रहे हो, तो आप लोगों की श्रद्धा बड़ी स्ट्रांग हो जानी चाहिए कि आप भक्ति कार्य करती है, क्योंकि इससे पहले आप लोग दुर्गा जी की पूजा कर चुके हैं, शिव जी की पूजा कर चुके हैं, गणेश जी की पूजा कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, यानी आपके चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आया। जैसे वो बोलते हैं मक्का गए मदीना गए बन के आए काजी, पुरानी आदत नहीं गई रहे पाजी के पाजी, है ना। नवरात्र में मुर्गा नहीं खाएंगे, वेट करते हैं दसी रात होगी चालू हो जाएंगे, हम तो अपने घर में देखें इस प्रकार से। या वो सावन में नहीं खाएंगे तो सावन के नेक्स्ट इसमें शुरू हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार से देवताओं की पूजा करने वालों का चरित्र में ज्यादा परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र जप करने वालों का, भक्तों का संग करने वालों का बहुत तेजी से परिवर्तन होता है चरित्र, उसको बाहर के लोग भी अनुभव करते हैं। भले ही आप तिलक ना लगाएं, भले ही आप कंठी ना पहने, भले ही आप धोती कुर्ता ना पहने, और लाल कपड़ा तो कोई मतलब ही नहीं है, जिससे आप समझ सकते हो कि भक्ति कितनी प्रभावशाली है, तो उसको क्यों ना अच्छे से किया जाए। बस मैं वाणी को विराम दूंगा, कोई प्रश्न है किसी का तो मेरे से, पूरा श्लोक तो हम नहीं कर पाए लेकिन जो भी है।